ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत अच्छे विषय पर खुद से बात करेंगे और वो विषय है संगम युग पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं बहुत सुंदर समय हमारे हाथ में आया है, भगवान आत्माओं को ही ये समय मिला है, जबकि स्वयं भगवान हमारे सामने संपूर्ण सत्य अनेक गुह्य रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं और उसने भाग्य बनाने की कलम भी हमारे हाथ में दे दी है। आई है सभी के हाथ में ये कलम या नहीं? ऐसा तो नहीं दूसरों को दे दिया? बहुत अच्छा अवसर। बाबा साकार में तो कहा करते थे, मुझे वो बात बहुत याद रहती है, बच्चे अपने भाग्य को देखो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। ब्रह्मा बाबा का अपना नशा भी था ये, लास्ट ईयर के रात्रि क्लास के महावाक्य हैं ये। रात्रि क्लास क्योंकि सुनाई नहीं जाती आजकल, शुरू में बहुत सुनाई जाती थी, बहुत सुंदर बातें होती थी उसमें भी, और लगता ऐसा था कि ब्रह्मा बाबा क्योंकि अपनी संपूर्ण स्थिति में थे 68 में, उनके नशे की, उनकी स्थिति की, उनकी साधनाओं की बातें उसमें आ गई हैं। हमें शायद सुनते लगता हो कि बाबा यूं ही हमें नशा चढ़ाने के लिए कह देते हैं, पर सत्य यही है, भगवान हमारे हाथ में है, वो हमारा हो गया है। इस बात पर सभी बहुत अच्छी तरह विचार करें, हमारा है वो। एक शब्द और जोड़ लिया करें, हमारे लिए है। बहुत बड़ा सुख हमें इस संगम युग पर मिल रहा है, सबने वो सुख अनुभव किया है, उसका स्वाद चखा है। पहली बहुत सुंदर चीज है यही कि हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। 84 जन्म हमने भिन्न भिन्न रसों में, भिन्न भिन्न सुखों का सीधा और उल्टा अनुभव करते हुए व्यतीत किया है। अब केवल ईश्वरीय सुख लेना है। सभी अपने से चिंतन करके देखें, न ऐसा समय आएगा दोबारा, न ऐसी विधि का हमें ज्ञान होगा। सुनते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तलाश रहेगी, पर ईश्वरीय सुख बरस रहा है, जैसे अमृत बरस रहा है, ईश्वरीय सुख भी बरस रहा है। सभी लें इसे बहुत अच्छी तरह, सवेरे से ही ये सुख बरसने लगता है, आँख खुलते ही हम मिलता है हमें, ये सोचकर ही मन आनंदित हो जाता है। जो गीत था, डूबा रहता है ना दिल मन, मनुष्य तो जब सवेरे आँख खोलते हैं, आँख खोलते हैं रोज सवेरे, तो फिर से समस्याओं के भूत उनके सामने खड़े होते हैं। आज फिर ये समस्या, और हम जब आँख खोलते हैं तो स्वयं वरदा था, वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख देता है, सारे बोझ हल लेता है। लक्ष्य बना लें संगम युग केवल ईश्वरीय सुख प्राप्त करने के लिए है। जो चीजें हमारे सुख में बाधा डालती हैं, उन्हें छोड़ देना है, यही सुख संत्याग है। सूक्ष्म त्याग को हर आत्मा स्वयं ही समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं। किसी चर्चाएं भी नहीं हो सकती। बातें सुन ली कुछ व्यर्थ की, सुख चला गया। कुछ सोच लिया, ऐसे ही सोच लिया, अनुमान हो गया, सुख चला गया। और तरफ ध्यान चला गया, सुख चला गया। कल की मुरली याद हो, क्योंकि तुम भिन्न भिन्न रसों में रहते हो, इसलिए स्थिति भी अलग अलग तरह की रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। एक रस में आ जाओ, एक के रस में आ जाओ, स्थिति एक रस हो जाएगी। कोई भी रस आत्मा को खींचने लगा, चाहे वो खाने का रस हो, चाहे आजकल टीवी देखने का रस हो, चाहे इधर उधर की किताबें पढ़ने का रस हो, बोलने का रस हो, ईश्वरीय रस चला गया। हम लक्ष्य बनाए, ये सभी रस तो जन्म जन्म मिलते रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। दो युग तो हमारे ऐसे बीतेंगे, सभी रसों में भरपूर। जिनको संसारिक सुख लोग कहें, उनमें भी संबंध, कितने सुख कि जहां कोई इच्छा ही नहीं बचती, अब केवल ईश्वरीय सुख। बोलो तैयार हैं इसके लिए सभी? सोच लें सभी, माताएं तैयार हैं? ये सुख दोबारा नहीं मिलेगा, और जिसने ये सुख इकट्ठा कर लिया होगा, क्या होगा उसे? वो दूसरों के दुख हर सकेंगे। तो मैं आप सभी को एक महान लक्ष्य की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसे मैं भी बहुत याद करता हूँ, और वो महान लक्ष्य ये है कि हम जिस महाविनाश के काल में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ दुख ही दुख होगा, जहाँ विज्ञान के, मेडिकल के सभी साधन फेल हो जाएंगे, हमें सभी के दुख हरने होंगे। हमें देना होगा संसार को बहुत कुछ। संसार की सभी आत्माएं प्यासी नजरों से हमारी ओर देखेंगी। यदि हम उन्हें न दे पाए तो हमें बहुत बहुत बुरा फील होगा, निराशा हो जाएगी कि संसार को हम दे नहीं पाए। सभी महान लक्ष्य को साथ ले लें। मुझे विनाश काल में आने वाले समय में ऐसा स्वयं को तैयार करना है अभी से, विनाश काल में हम सबको सुख दे सकें, सब कर सकें। विनाश छोटी घटना नहीं होगी, अति अति भयानक घटना, जिसके लिए बाबा कहते हैं उसे देखना भी बहुत शक्तिशाली आत्मा का काम होगा, जिसे देखा भी नहीं जा सकेगा। अगर हमें उससे गुजरना पड़ेगा तो हमारी मनोस्थिति कैसी रहेगी? अपने को भी तैयार करना है और देने के लिए भी तैयार करना है, देखने के लिए भी और देने के लिए भी। तो ईश्वरीय सुखों से हमें स्वयं को भरना है। संगम युग, दूसरी बात पर आ जाए, भाग्य बनाने का सुंदर काल है। सभी विचार करें हम कैसे कैसे अपने भाग्य का निर्माण करें। बाबा इस सीजन की मुरलियों में भी दो बार एक चीज कहे, तीन तरीके हैं जमा करने के, याद है? स्वच्छ पुरुषार्थ के द्वारा, दूसरा दुआएं देना। मिल तो स्वतः ही जाएंगी, दुआएं देना। और उसका तरीका बताया, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तीसरा तरीका पुण्य कर्म जमा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना, स्वमान में रहकर सेवा करना, श्रेष्ठ भाव और भावनाओं से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा ने तो हम सबको यज्ञ रच कर हाथ में दे दिया है ना, इस यज्ञ से तुम अपना पुण्य भी जमा करो और संसार का भी कल्याण करो। गीता में भी ये बहुत अच्छी बात है, प्रजा पिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्स, तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। अब शिव बाबा ने और प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर हमारे हाथ में दे दिया, इससे तुम अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो, इससे तुम अपने भाग्य का निर्माण करो, दूसरों के भाग्य का निर्माण करो, इससे ही तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हो। मुरलियां चली हैं बाबा की, मैं देखा बहुत दिन से वो मुरली आई नहीं है रिपीट होकर, यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करने वाला है। इसमें भी यज्ञ सेवा और यज्ञ की संभाल करना, लोग भूल के जा रहे हैं यज्ञ के महत्व को, भूलना नहीं है। ये यज्ञ एक महान कर्तव्य के लिए रचा गया है ना, इससे एक ओर विनाश ज्वाला प्रकट होगी, दूसरी ओर सारे संसार के विकारों की पापों की आहुति भी इसमें पड़ जाएगी। दोनों काम हम सबको करने हैं। तो भाग्य बनाने के लिए देखिए भगवान ने यज्ञ रच कर हमें दिया, भाग्य बनाओ, सेवा करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है, करो इसमें निस्वार्थ सेवा और भाग्य का निर्माण करो। ये भावनाएं ध्यान दें, सभी भावनाओं पर, यद्यपि ये भक्ति का शब्द है लेकिन ये न भक्ति का न ज्ञान का, ये तो एक नेचुरल चीज है हर मनुष्य के साथ। डॉक्टर में भी भावना होगी दवाई काम करेगी, भक्ति में हम देखते आए सभी किसी पत्थर की मूर्ति में भावना है, भावना से फल मिल रहा है। यज्ञ सेवा हम अच्छी भावना से करें, आपको झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई, झाड़ू तो घर में भी लगाया जाता है लेकिन बहुत प्यार और भावना से झाड़ू लगाना वो भाग्य निर्माण करने वाला हो जाता है। हर तरह की यज्ञ सेवा, सेवा तो सेवा होती है, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, ये सेवा बड़ी है ये छोटी है, सेवा भाव हो जाए तो ये बड़े और छोटेपन की भावना भी समाप्त हो जाती है। हम पुण्य का खाता जमा करते चलें, दूसरों को सुख देने से पुण्य बढ़ता है। सोच लें सभी, 84 जन्मों के लिए ही श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर लेना है, केवल 21 जन्म के लिए नहीं, क्योंकि जो संस्कार हम यहाँ अपना लेंगे वो हमारे द्वापर से भी चालू रहेंगे। अगर हमने यहाँ स्वयं को संतुष्ट कर लिया तो हम जन्म जन्म संतुष्ट रहेंगे, अगर हमने यहाँ सबको संतुष्ट करना सीख लिया तो हम जन्म जन्म संतुष्ट करेंगे। आप सभी ने जिसने आपने से राजाओं के बारे में कुछ जाना हो, द्वापर युग में भी राजाओं को लक्ष्य रहता था हमारी प्रजा संपूर्ण सुखी हो, हमारे राज में कोई व्यक्ति रोता ना हो, ऐसा तो नहीं किसी को ताले लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई भूखा सो गया है, ये थे सच्चे पालना के संस्कार। इसलिए राजा को माता पिता माना जाता था, क्योंकि राजाओं की बात तो वो है ही नहीं, वो संस्कार हम सब यहीं भरते हैं, वो हम में से ही हैं आत्माएं जिन्होंने द्वापर युग से भी राज किया है। इसलिए जो संस्कार पालना के, सुख देने के, दूसरों की केयर करने के, दूसरों के सुखों के लिए स्वयं भी दुख उठा देने के संस्कार हैं, महान संस्कार हैं, अभी यदि हम अपनाएंगे तो जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। अभी हम ट्रेन से आ रहे थे, एक ज्ञानी परिवार, तो बहुत सारे ज्ञानी भी मेरठ से चढ़े, उनका यहाँ आबू में मिलन है कुछ, बहुत सारे आ रहे थे, तो किसी परिवार ने उनसे कहा भाई तुम हमारी सीट ले लो, हम परिवार हैं यहाँ रह जाएंगे, हमारी सीट वहाँ है। ले ली बेचारों ने। रात कोई कोई दूसरी पार्टी आ गई, वो उतर गए तो ये सीट तो हमारी है। अब वो उठे, थोड़ा गुस्सा आ रहा उनको, हमें भी उठना पड़ा, हमसे बदल ली थी किसी ने, हम ले देते हैं भाई, कोई परिवार है आपस में रह जाए, हम तो अकेले हैं कहीं भी सो जाएंगे। मैंने उसको कहा कि दूसरों को सुख देने के लिए यदि थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई अर्जा नहीं है, खुद हो गया वो बुजुर्ग था। ये बात बड़ी काम की कही है, बस आराम से जाके सो गए, नहीं तो कितने संकल्प चला रहे थे, इसने किया उसने किया ये किया। हम संस्कार भरे अपने अंदर पालना के, जो पालना के संस्कार यहाँ भरेंगे, दूसरों का ध्यान देना। अब एक कमरे में भी सोती है ना सेवाधारी बहने, जो दूसरों का ध्यान रखते हैं ये संस्कार बहुत महान है। कुछ लोग दूसरों का ध्यान नहीं रखते, रात को लेट भी आएंगे, लाइट जला देंगे, हमें तो चाहिए ना कपड़े बदलने, मुरली पढ़ के सोएंगे हम तो, तुम भले सब जग जाओ, स्वार्थ हो गया ना ये। मुरली तो बाहर भी पढ़ी जा सकती है, कुछ लोग अंधेरे में ही कपड़े बदल के सो जाते हैं। दूसरों का ध्यान रखना ये एक बहुत सुंदर महानता का संस्कार है। सभी माताएं भाई बहने ध्यान दें, जो दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरों की पालना करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, ये राजाई संस्कार हैं, उन्हें वही प्राप्त होगा। जो पहले अपना ध्यान रखेंगे, ये स्वार्थ के संस्कार हैं, उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। जो यहाँ अपना ध्यान रखेंगे, वहाँ दूसरों को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जो यहाँ सबका ध्यान रखेंगे, वहाँ सब उनका ध्यान रखेंगे, और वो सबके पालक बन जाएंगे, पालनहार बन जाएंगे। ऐसा महान भाग्य बनाने का समय हमारे सामने है। चेक करें आप अपने संस्कारों को, विशेष रूप से ध्यान दें। संसार में चारों ओर हम देख सकते हैं, अपने को भी देख सकते हैं। इस संसार में अनेक लोग केवल अपने संस्कारों से बची हैं, वो सोचते रहे हैं ये हमसे ऐसा करते हैं, ये हमसे ऐसा करते, इन्होंने गड़बड़ कर दी, इन्होंने हमें धोखा दिया। पर सत्यता ये है, मनुष्य अपने ही संस्कारों से दुखी है। सुखी होना है तो स्वयं होना है। अपने सुख की भागदौड़ यदि दूसरे को दे दी तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। ठीक है ये बात। दुखी मनुष्य अपने संस्कारों से है। मुझे कई बुजुर्ग माताएं दिख रही है, जब मैं बुजुर्ग माताओं को देखता हूँ तो कई माताएं मुझे याद आ जाती हैं, जो सोच सोच कर दुखी हैं। मेरी बहू मेरे बारे में ये सोचती है, देखो वो उसके सब बुजुर्गों को भी टेस्ट कर रही है, मेरा फलाना लड़का मेरे से ऐसा ऐसा कर रहा है। अपने संस्कार ज्यादा सोचने के, कड़वा बोलने के, दूसरों को कष्ट देने के, दूसरों की निंदा करने के, ये स्वयं के लिए कष्टदायी हैं। बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, जो लोग दूसरों की बहुत ग्लानी करते हैं, अगर कोई उनकी ग्लानी करते तो सहन नहीं होता। जो दूसरों को बहुत कड़वा बोलते हैं, उन्हें कोई कड़वा बोल दे, सहन नहीं होता, क्योंकि उनकी सारी शक्ति इसमें नष्ट हो जाती है। एक माता की हंसी की बात मैं सुनाया करता हूँ। बहुत गुस्सा करती थी वो, अब तो शरीर छोड़ दिया। एक दिन उसको किसी ने जरा जोर से बोल दिया, वो डर गई, कहा देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो। तब तो इतने हंसे उसकी बात सुन के, जिसने जिंदगी भर किसी से प्यार से बात नहीं किया, वो भी कामना करती है दूसरे मेरे से प्यार से बात करें। तो हम सभी संगम युग पर सुख पाने के लिए अपने संस्कारों को सॉफ्ट करें। ये जो कटुताल आदि है संस्कारों में, इसको चेंज करें, नहीं तो अंत में ये संस्कार चेंज होंगे। संस्कार गर्मी से चेंज होंगे ना, या तो योग की गर्मी से, नहीं तो विनाश की गर्मी से, बड़े कष्टदायक होंगे तब। चेंज तो होना है, अपने देव स्वरूप में सबको पहुंचना है। पहले कोई सॉफ्ट हो जाए, सुखी हो जाएंगे लंबा काल, नहीं हुए तो अंत में विनाश की ज्वाला उन संस्कारों को जलाकर नरम करेगी। हम सोच ले हमें क्या करना है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दें, संगम युग श्रेष्ठ बुद्धि के निर्माण करने का भी युग है। बुद्धि जो सबसे सुंदर संपत्ति है मनुष्य की, सबसे सुंदर कहेंगे पहला नंबर, जो जन्म जन्म मनुष्य के साथ चलती है, ऐसी जिसकी बुद्धि वैसा ही उसका भविष्य। आज भी हम देखते हैं ना, विद्यार्थी काल में ही जैसी जिसकी बुद्धि रही वैसा उसका भविष्य हो गया। हम बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं, और बुद्धि का निर्माण होता है किससे? बाबा से तो होता ही है। बाबा ने क्या दिया इसके लिए? श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान का चिंतन और ज्ञान का ध्यान, बुद्धि की विवेक शक्ति का विकास करता है। मुरली में था ना कल, गहराई में जाएंगे तो, बोलो क्या था? गहराई में जाएंगे तो घबराहट दूर हो जाएगी, और गहराई में होता है बहुत माल। सागर में गहराई में हीरे रतन मिलते हैं ना। ज्ञान की गहराई में जाना, हर घटना को गुह्यता की दृष्टि से निहारना, तो घबराहट क्या क्यों सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बुद्धि का निर्माण दूसरा जो आप सबने बताया, बुद्धि स्वच्छ दिव्य होती है योग से। तो ज्ञान की शक्ति से हम विवेक शक्ति को बढ़ाएं, योग की शक्ति से बुद्धि को दिव्य बनाएं। ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। बहुत सूक्ष्म विषय है ये बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना। इसलिए बाबा की मुरलियों में हम हमेशा सुनते हैं बुद्धि को क्लीन और क्लियर। क्लीन करना बहुत आवश्यक है, सफाई करना बुद्धि की। बहुत सारी गंदगी हमने भर ली है जन्म जन्म, उस गंदगी से जो जर्म्स पैदा हो रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं मनुष्य को, उसकी सफाई करेंगे तो अपनी ही बुद्धि अपने लिए बड़ी सुखदायी हो जाएगी। आजकल के मनुष्यों की बुद्धि उनके लिए दुखदायी हो गई है। जो जितना बुद्धिमान वो उतना ही परेशान नजर आता है। एवरेज बुद्धि वाले, मध्यम वर्ग, जिनको मध्यम तरह की बुद्धि है, सुखी दिखाई देते हैं, ज्यादा नहीं सोचते। बहुत बुद्धिमान है, बहुत सोचते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं, परेशान हो उठते हैं। इसलिए माताएं ज्यादा नहीं सोचती, नहीं सोचना है, सोच के करेंगे क्या। ध्यान दें हम अगली बात पर, संगम युग श्रेष्ठ स्पिरिचुअल एनर्जी, ईश्वरीय शक्तियां भरने का युग है। जो भी आप में से चाहें इसको लक्ष्य बना लें, ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को संपन्न करना है। यही शक्तियां जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी। यही शक्तियां वर्तमान में भी, चाहे हम सेवा में हैं तो सेवाओं की सफलता का आधार है, लौकिक में है लौकिक कार्यों की सफलता का आधार है। शरीर को स्वस्थ रखने का आधार है, विघ्नों को समाप्त करने का भी आधार है। संसार में बुद्धिमानों को विद्वानों को भी ये पता नहीं है, ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ बोलने से वो अपनी शक्तियां नष्ट कर रहे हैं। आप चारों ओर देखें दुनिया में, लोगों को सारा दिन लगे हुए हैं बातें करने में, कुछ भी, कभी राजनीति की बातें, कभी फिल्मों वालों की बातें, कभी कोई और दुनियावी घटनाओं की चर्चाएं, सारा दिन लंबा काल उसके दे रहे हैं, छोटी सी बात में घंटों बिता रहे हैं। ये भूल गया है कि इससे शक्तियां नष्ट हो रही हैं। हम सब ध्यान दें, जिनके पास ध्यान है वो ध्यान दें। योग से हम शक्तियां जमा सकते हैं, ऐसे तो नहीं कि नष्ट हो रही हैं। एक बात में ही बहुत देर हम बुद्धि चलाते हैं, बहुत चर्चाएं करते हैं और हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं, क्योंकि इन शक्तियों को यदि हम नष्ट करेंगे तो सफलता का मार्ग कठिन हो जाएगा। लौकिक में भी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अनेक विघ्न आते रहेंगे, और यदि हमारे पास शक्तियां बहुत होंगी तो विघ्न नष्ट होंगे, हर जगह हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सभी अपनी एक आदत बनाएं, बातों को जल्दी से खत्म करना, बढ़ाना नहीं है। बातें तो रोज आती हैं, फटाफट आगे बढ़ते चलें। हम यात्रा पर हैं, वैसे भी हम चलते हैं तो सीन छूटते जाते हैं, रुकते हैं तो उसी समय चारों ओर जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर आने लगता है। हम चलते चलें, रुके नहीं, चीन पीछे छूटते जाएंगे। हर चीज हर क्षण बदल रही है। बाबा ने ड्रामा के बारे में अति गुह्यता हम सबके सामने रखी है। एक अति गुह्य बात है, जो इस ड्रामा में एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होता, उसे रिपीट होना है तो 5000 साल ही चाहिए। इस बात को समझते हुए हम बातों को जल्दी जल्दी छोड़ते चलें। किसी बात को हम पकड़ते हैं, उसके विस्तार में जाते हैं, हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। आप करके देखेंगे ये प्रयोग, जो भी बात आपके सामने आ रही है उसका जरा हल्का करके, चाहे वो एक समस्या है, चाहे किसी ने आपकी ग्लानी की है, चाहे कोई टेंशन की बात है, उसको जरा हल्का करके अपनी अच्छी स्थिति में रहो, बात समाप्त हो जाएगी। पिछली बार भी हमने एक चर्चा की थी, बहुत ही अच्छी चिंतन की बात है, क्योंकि मनुष्य पर सबसे अधिक इफेक्ट होता है दूसरों के बुरे शब्दों का, होता है ना। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई बोलता ही रहे, व्यर्थ की बातें हमारे बारे में सुनाता रहे, प्रचार करता रहे, बातों का इफेक्ट मनुष्य के ऊपर बहुत होता है। जरा सूक्ष्मता से दृष्टि डाल लें, हम दूसरों के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए बाबा के शब्दों पर। मान लो हमारी कोई निंदा ही कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना। हम बाबा के शब्दों पर ध्यान दें, बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा वो जो निंदा स्तुति हर जीत में समान रहे। ये याद आते ही दूसरे की निंदा का प्रभाव ढीला होने लगेगा, कि उनका काम है निंदा करना और हमारा काम है वो करना जो भगवान ने कहा है। दूसरों के शब्दों पर ध्यान न देकर, ध्यान तो जाएगा लेकिन जल्दी उसको लाइट करके, हल्का करके, हम बाबा के शब्दों पर ध्यान देंगे तो हमें बहुत शक्तियां मिल जाएंगी। अगर हमें ज्यादा सोचने की आदत है, पीछे अभी अभी एक परिवार आया मिलने, मारवाड़ी परिवार, अच्छा मैंने ऐसे पूछ लिया, माताएं टिफिन, सभी माताएं सुखी हैं, तो दो माताएं तीसरी के लिए बोलने लगी ये बहुत सोचती है, वो भी हंसने लगी, एक ही परिवार की थी, मुझे बताया कि अगर मुझे सवेरे कोई एक बात कह जाए तो सारा दिन मेरा वही चिंतन चलता है, कभी भी कोई मुझे दो शब्द बोल जाए बस खेल पूरा हो गया, मेरी शांति गई। अभी वो बता रही है, ये भी अच्छी बात है कि उसको अपनी इस कमजोरी का ज्ञान था। मैंने उसको याद दिलाया, दूसरा व्यक्ति आपको दो बात कह के बहुत खुश होता होगा, हाँ वो उधर खुशी मनाते हैं, मैं इधर मूड ऑफ करके बैठ जाती हूँ। मैंने कहा बस यही सोच लो कि कहने वाला खुश तो सुनने वाले भी खुश, अपने विचारों को बोर्ड करें, विशाल बनाएं, कि जब कहने वाला हल्का हो गया है, किसी ने 10 दिन से अपने मन में रखी थी कोई बात कि मौका मिलते ही इन्हें सुनाऊंगा, फायरिंग करूंगा, उसने अपनी फायरिंग कर दी, वो तो हो गए हल्के, और उसकी फायरिंग से हम हो गए गर्म। तो थोड़ा सा अपने को जरा सावधान करें, इन सब से हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, इनका ही प्रभाव हेल्थ पर आ रहा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, किसी का हार्ट पर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये स्वस्थ मन की शक्तियां छीन होती जाती हैं, उसका निगेटिव प्रभाव हर एक की हेल्थ पर पड़ता रहता है। इसलिए जरा इन सब से बाहर निकल जाएं, बातें होती रहेंगी। हम जिस युग में गुजर रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि बातें ना आए, बातें तो आएंगी जाएंगी, जाने दो, जाने दो उनको, हल्का करें अपने को और लक्ष्य बना लें, हमें ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरना है, यही शक्तियां हमारे काम आएंगी। आजकल देश भी सोचते हैं ना, एटॉमिक एनर्जी से स्वयं को संपन्न कर लें, काम आएंगी बहुत, युद्ध में सब हमसे डरेंगे, कोई हमसे अटैक नहीं कर पाएगा, हम भी विचार कर लें, ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरना है, माया अटैक ही नहीं कर पाएगी, विघ्न हमारे सामने ठहर ही नहीं पाएंगे, सफलता सदा ही हमारे चरणों में आएगी, कोई भी विघ्न बाधा हमारा मार्ग रोक ही नहीं सकेगी। शक्तियां जमा करें, ध्यान दें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी बात के ज्यादा चिंतन से हम शक्तियों को नष्ट न करें, बातों के प्रभाव को, बातों को जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर दें उतना ही कल्याणकारी रहेगा। पसंद है ये बात सभी को, तो सभी विचार करें हमारा संगम युग का समय किस तरह बीत रहा है। अब आत्मचिंतन की ओर सभी चलें, ऐसा तो नहीं जिससे मिलने के लिए युगों से इंतजार करते थे, सोचते थे कभी भगवान आ जाए इस धरा पर, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसे भी कहते थे एक बार तुम आ जाओ फिर तुमसे अलग नहीं होंगे, एक बार तुम आ जाओ फिर तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अब सभी अपने से बात करें, जब ऐसा सुंदर भाग्य हमारे द्वार पर आया है, जब स्वयं भगवान हमारा मेहमान बनकर आ गया है ना हर एक के द्वार पर, तो हम अपने सुंदर समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, हमने कहीं स्वयं को उलझा तो नहीं दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट चिंतन की बात है। मनुष्य के हाथ में है वो अपने को उलझा दे या सभी उलझनों से ऊपर उठा ले, हाथ में है या दूसरे के हाथ में, कई दूसरों के हाथ में आ गए हैं, ग्रस्त में, कारोबार की समस्याओं ने, कुछ पाप कर्मों के पाप कर्मों ने, कुछ और समस्याओं ने उलझा दिया है कईयों को। मैं केवल ये कह दूं कि उलझना नहीं है, इससे तो काम नहीं चलेगा, मैं आपको ये कहूंगा बाबा ने जो विधि बताई है इन सब से निकलने की, उनको यूज करो। जैसे पहली विधि, बहुत लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बात है, अभी भी एक माता मिली, मैं 16 साल से ज्ञान में हूँ, फिर आपने बताया लेकिन बीच में समस्याएं आ गई तो ज्ञान छूट गया, फिर आ गई क्योंकि रह तो नहीं सकते थे, ईश्वरीय सुख पाया है, भगवान को इन आंखों से देखा है हजारों बार। मैंने कहा कि समस्याएं जब आ जाएं, तो समस्याओं का समाधान ज्ञान छोड़ना थोड़ा ही है, कोई हम मुरली में नहीं आ सकते क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। ठीक करें इसको, मुरली सुनने आएंगे तो समस्याएं कम हो जाएंगी, हम सवेरे नहीं उठ सकते क्योंकि आजकल बहुत समस्याएं चल रही हैं। सवेरे उठकर बाबा से वरदान लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये मार्ग क्यों ना अपनाए हम? रियल मार्ग तो ये है ना, मैंने बहुत जगह सेंटर से देखा है। रहने क्या करती हैं? कोई भी समस्या आई तो कुछ नहीं करती, योग बच्ची चालू करा देती हैं, समस्या खत्म हो जाती है। कोई भी बाधा आ गई, स्टूडेंट्स की भी आ गई, उन्हें कहते कुछ नहीं, योग में बैठ जाओ, कुछ बाबा की मदद मिलती है, कुछ अपनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, कुछ जो हमारा विवेक समस्याओं ने ढक लिया था वो जरा बाहर आ जाता है और हमें उसका यथार्थ समाधान मिल जाता है। समस्याओं को समाधान करें श्रेष्ठ स्वमान से, समस्याओं से बाहर निकलें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सभी अपना लें। मैंने पिछली बार भी 4-5 संकल्प दिए थे सबको, जीवन को एक लेबोरेटरी बना दें, प्रयोगशाला, और इसमें कुछ बातों के प्रयोग करें। एक बहुत सुंदर प्रयोग, मैं दो बातें आपको फिर याद दिला देता हूँ। स्वस्थिति से परिस्थितियों को ठीक करना है, ये स्वयं भगवान ने कहा है, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी, और तुम्हारी स्थिति बिगड़ी तो परिस्थितियाँ और जटिल हो जाएंगी, क्योंकि विघ्न और समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। संभालें आप अपने चित्त में इस बात को, हमें स्थिति से ही परिस्थितियों को ठीक करना है। परिस्थितियां हमें उलझा देंगी नहीं तो, परिस्थितियों का जाल ऐसा हो जाता है कि मनुष्य उसमें फंसकर नष्ट हो सकता है। उसकी सुख शांति, उसका धैर्य, उसका विवेक, उसकी सारी सुंदर धारणाएं बिखर सकती हैं। सावधानी पूर्वक सभी अपने को जरा शांत करके श्रेष्ठ स्थिति की ओर ध्यान दें। कई भाई बहने हैं, परिस्थिति आ गई, 2 बजे उठना शुरू कर देते हैं, अच्छा योग करते हैं, ठीक है, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, युद्ध भी होगा मन में, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, 2-4 दिन में परिस्थिति समाप्त हो जाती है। अच्छी प्लान करेंगे सभी। दूसरी प्रयोग की बात जो बिल्कुल सिंपल है और जिसके अनेक सुंदर अनुभव सबको करने हैं, इस साल का ही बाबा का महावाक्य है, पहले से ही बाबा कहते आ रहे हैं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत अभ्यास कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सेवाओं के फील्ड में, लौकिक कार्यों में, अपने परिवार में, अब देखेंगे समस्याएं नष्ट होने लगेंगी। ये 2 बात मैंने आपको कही, एक ही बात है ये दोनों भी, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति का आधार भी स्वमान है। श्रेष्ठ स्वमान माना श्रेष्ठ स्थिति, मैं एक महान आत्मा हूँ, इस स्वमान को हम ले लें, स्थिति महान होने लगेगी। मैं इस देवी हूँ, इस स्वमान को ले लें, स्थिति सुंदर होने लगेगी। तो सभी कहीं भी स्वयं को उलझाएं नहीं, ध्यान दें। संगम योग बहुत बहुत कीमती समय है, याद है बाबा की महावाक्य, 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर। कहीं भी यदि हम देखें कि यहाँ उलझन है, अलग हो जाएं, उलझनों में उलझकर अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। ठीक बात है या नहीं? सेवा में भी हम कहीं देखें भैया बहुत उलझन है, थोड़ा सुनहरे हो जाएं, मैं ही ये सेवा करूं वही उलझ जाऊं, ये बुद्धिमानी नहीं है। सभी ध्यान दें, संगम युग का सुंदर समय हम कैसे बिता रहे हैं, हमने कहीं अपने को उलझा तो नहीं दिया है, काम धंधों के विस्तार में भी तो नहीं उलझा दिया है, अपने को समेटने फिर से सुंदर समय है। बाबा ने एक बार जो बोला था याद है, माताओं को याद दिला देना चाहता हूँ, सभी भाइयों को भी, आप समय की चेतावनी बार बार दे रहे हैं, इसको कोमन बात नहीं समझना। हमें कोमन बात समझने की आदत पड़ गई है ना, तो बाबा तो कहता ही रहता है। हम भगवान को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तो कहता ही रहता है, जैसे वो झूठ बोल रहा हो। जो परम सत्य है वो कभी असत्य बोलेगा? वो वही चीज बोलता है जिसमें हमारा संपूर्ण कल्याण हो। वो टीचर भी है ना, अपने एक टीचर ग्रंथ है, मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, उसी तरीके को यूज करता है ना। सदगुरु भी है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है मुझे इन्हें किस किस तरह गाइडेंस देनी है। वो पिता भी है तो प्यार भी अपना संपूर्ण रूप से रखता है। तो हम समय की चेतावनी को कॉमन नहीं समझेंगे। इसलिए जो बुद्धिमान आत्माएं हैं उन्हें चाहिए संगम युग पर स्वयं को कहीं भी उलझाए नहीं। अगर उलझ गए हों आराम से निकल जाएं। निकलना भी अपने हाथ में है, कुछ लॉस भी करना पड़े, कुछ सुनना भी पड़े, लगे थोड़ा सा कुछ खो दिया है हमने, तो हर जा नहीं। बाहर निकल कर ईश्वरीय सुख से, ईश्वरीय शक्तियों से अपनी झोली भरेंगे तो बहुत आनंद आएगा, आत्म संतोष होगा। भगवान हमें मिला, हमने उसे पहचाना, हमने उसे अपना बनाया, तो सब कुछ मिल गया, हम संतुष्ट हुए। ऐसा ना हो, लास्ट लाइन में कहूंगा कि जब संगम जीते तो हमारे दिल से आवाज निकले कि संतुष्ट नहीं हुए, मजा नहीं आया जीवन में। ये शब्द हमारे ना हो, हमारे शब्द हो कि जीवन आनंदों से गुजरा, बाबा से जो कुछ लेना चाहिए था हमने वो सब कुछ ले लिया, और सब खुले हाथ बांटते रहें। ओम शांति। एक अभ्यास में सभी बैठेंगे, आप सबको बहुत काम आएगा, हम यहाँ बहुत करा रहे हैं उसको। आप दादा नीचे आ गए हैं और उसने अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर लगा दी है। इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे जो यहाँ आए हैं सेवा में भाई बहने, अब से ही उसको शुरू करेंगे।